الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جمعے کے دن کی اور اللہ کی رحمتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم اس کلاس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. آپ سب کی بہت سی دعائیں ساتھ میں تھیں اس لیے کہ آپ لوگ کانسٹنٹلی اسی پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہ رہی تھیں. اللہ کا نام لے کر سورۃ الفلق کی ان ڈیپ اسٹڈی کا دوسرا دن شروع کرتے ہیں. الحمدللہ کل ہم نے سورت کے آغاز میں اس کی پہلی آیت کو سمجھا تھا اور پہلی آیت کو سمجھتے ہوئے میں تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں. ہم نے قل اعوذ برب الفلق کی آیت میں الفلق کے مفہوم دیکھے تھے اور میں نے آپ کے سامنے مینلی تین میننگز رکھے تھے جن میں سے ایک آپ کو بتایا تھا سمپل میننگ جو ہے وہ ہے صبح. پھر آپ کو بتایا تھا دوسرا میننگ جو کلاسیکل اسکالرز لیتے ہیں وہ اس کو بیچ سے تعبیر کرتے ہیں تاکہ اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ کیسے اندھیروں میں سے جو ہے وہ بیچ کے کوٹیلیڈنز باہر آتے ہیں. اور تیسرا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ڈکشنریز کے اندر اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے فلق کو خلق سے. ایکچولی اگر آپ کلاسیکل اسکالرس میں جائیں گی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آپ کو یہ ایکسپلینیشن ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس فلقہ کے اندر تخلیق کا پہلو آتا ہے اور میں نے اس کو کل کی کلاس میں کافی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو الحمدللہ بتا دیا تھا. اسی ٹاپک کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے پہلی آیت کی آخری جو ہمارے سامنے ایکسپلینیشن تھی فلق کی ہی ایکسپلینیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے بات کی تھی اپنی کلاس کے اینڈ پر کہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ جیسے اللہ ہر تخلیق کو اس سٹیئرنگ کے پروسیس سے سامنے لے کر آتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے اور مجھے اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے کہ میری مشکلات میں سے بھی خیر کا اسی طرح سے پھوٹنا جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اسی طرح سے میری زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے میری لائف کی کنسٹرکشنز جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. تو اسی پوائنٹ سے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اب اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک فریز رکھیں جب مشکل آئے. جب بھی مشکل آئے قرآن میں آتا ہے من الظلمات الى النور اونلی اللہ ہیز دا کیپیسٹی کہ جو اندھیروں میں سے نور کی طرف روشنی کی طرف گائیڈنس کی طرف لا سکتا ہے. خود قرآن میں آتا ہے اللہ کے لیے اللہ نور السماوات والارض. تو جب ایمبیگوٹی بڑھ جائے جب سمجھ نہ آئے کہ کون سا فیصلہ کیا جائے تو اس رب الفلق کو یاد کر لیا کریں کہ وہ مجھے کلیئرٹی دے گا, وہ مجھے ویژن دے گا, وہ مجھے ان اپنی زندگی کی پریشانیوں کے ظلمات سے نکالے گا. ایک بہت اسٹرانگ کانسیپٹ جو اسکالرز آپ کو قل اعوذ برب الفلق میں مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مشکلات کے اندھیروں کو ختم کرنے والی چیز اصل میں اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے ذکر کو تھام لیں اور اللہ کے دین کو تھام لیں. اسی طرح سے میں اس بات کے ساتھ آیت نمبر 2 پر جاؤں گی جو اس وقت بہت ضروری ہے. جس دنیا میں اس وقت خاص طور پر اس پینڈیمک ورلڈ میں جب ہم موجود ہیں اور کانسٹنٹلی ہمارے سامنے مختلف طرح کی جو ہیں وہ باتیں اور مختلف طرح کی نیوز اور مختلف طرح کے آرٹیکلز اور ڈاکیومنٹریز بمبارڈڈ ہوتے رہتے ہیں, ऐसी सूरत के अंदर ये जो कॉन्स्पिरेसी क्लाउड्स हमारे आसपास हैं, ऐसी सूरत में द ओनली लाइट, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, द ओनली लाइट विच विल गिव यू विजन इज इस्लाम, इनशाला। ये आज की हिडन स्कीम्स जो चलती हैं, ये कोई आज की नहीं चल रही हैं। हमने एक टर्म सुनी होगी आप में से जो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, और आप में से जिन लोगों को लेटेस्ट रिसर्च के साथ अटैच होना अच्छा लगता है, आपने एक टर्म सुनी होगी हिडन स्कूल्स की। यूरोपियन कल्चर के अंदर ये हिडन स्कूल्स डेवलप हुए थे, और अगर यूरोपियन रेनेसांस को हम समझते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो आपको पता चलेगा कि ये हमेशा से हिडन स्कीम्स ने, हिडन स्कूल्स फिनोमेना ने आपको और इंसानियत को उलझन का शिकार ज़रूर किया है। आज भी बहुत सी थ्योरीज हमारे सामने आती हैं कि लोग कहते हैं कि ये सब क्रिएटेड चीज़ें हैं, ये सब प्री प्लान्ड हैं, ये सब ऐसे पहले से प्लान हो चुका था। ऐसे में मेरा और आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एज सिंपल एज दिस, इस्लाम को थाम लें, रब्बिल फलक के साथ क्लिंग कर जाएं, डोंट फॉरगेट द मीनिंग्स ऑफ आऊ बिल्ला, जिसमें आप किसी पर भरोसा करते हुए उससे क्लिंग कर जाते हैं। तो इस्लाम को थामें, और कॉन्स्पिरेसीज की खोज में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू वेरी प्रैक्टिकल टिप, वो करें जिसकी जिसकी कोई समझ लें इम्पोर्टेंस, या जिसकी कोई वैल्यू और जिसका कोई फ़ायदा आपकी और मेरी चंद साल की ज़िंदगी में हमें मिल जाए, और उसके बाद ये चंद साल का फ़ायदा हमें आखिरत में फ़ायदा दे सके। कुछ अपनी ज़िंदगी में वो करें, बजाय इसके कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर किताबों की किताबें पढ़ते रहें, कुछ वो करें जिससे आप अपनी ज़िंदगी और अपने साथ रहने वाले प्यारों की ज़िंदगी को खूबसूरत बना कर चले जाएं। पढ़ें आऊज़ बिरब्बिल फलक, ताकि आपको ये भी क्लैरिटी मिले COVID-19 की असल हकीकत क्या है। आपको इसके ऊपर वीडियोस की वीडियोस मिल जाएंगी, ये किसका बायो वेपन है, असल में ये किसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है, कौन इसकी वैक्सीन असल में बनाएगा, और कौन इस वैक्सीन से फ़ायदा उठाएगा। जस्ट लिसन टू मी, ये सब होना है। बैकग्राउंड में कॉन्स्पिरेसीज हमेशा हमेशा से चली हैं और हमेशा चलती रहेंगी। क्यों? कल वाली बात मेरी याद कर लीजिए, ये दुनिया इम्तिहान है, अल्लाह ने इसको इम्तिहान के लिए बनाया है, सही? कॉन्स्पिरेसीज को जानकर आप अपनी जान को 4 दिन के लिए बचा लेंगे, 6 दिन के लिए बचा लेंगे, 100 साल के लिए बचा लेंगे, और कितना बचाएंगे? एट द एंड मौत तो आनी है, तो जिंदगी इम्तिहान है। आप इन फैक्टर्स में उलझकर वो भूल जाएंगी जिसके लिए रब ने आपको पैदा किया है। और इसी कॉन्स्पिरेसी में जो इंसान पड़ा रहा, सारा सारा दिन बैठकर किताबें पढ़ रहा है, सारा सारा दिन बैठकर उसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा है, और जब रब के सामने पहुंच, और घर वालों के साथ मिजाज बिगड़े हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं, और आप इस बात को लिख लें, जो लोग कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज की खोज में पड़े रहते हैं, कहीं लिख लें इस बात को ताकि आप इसका शिकार ना हो, जो लोग कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज की खोज में पड़े रहते हैं, उनको सिर्फ कुफार की बातें कॉन्स्पिरेसी नहीं नज़र आती हैं, उनको अपने ख़ानदान के हर फर्द के हर अमल के पीछे, उसकी हर बात के पीछे कॉन्स्पिरेसी नज़र आना शुरू हो जाती है। एंड देन यू कैन जस्ट से इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, दैट्स द पॉइंट। डोंट वेस्ट योर लाइफ एंड डोंट लूज योर डायरेक्शन, दैट्स द पॉइंट। इम्तिहान क्या है? कि आप और मैं अपने रब के साथ क्लिंग कर जाएं, रब्बिल फलक को पहचान लें, वो है जो नूरु समावाती वल अर्ध है। इन कॉन्स्पिरेसीज के अंधेरों में से अगर कोई चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो वो सिर्फ मेरे रब का दिया हुआ दीन है। करने का काम मुसलमानों का ये नहीं था कि वो कुफार की कॉन्स्पिरेसीज तलाश करें और उसको एक्सपोज करते रहें। करने का काम क्या था? जो 5 फुट के जिस्म के ऊपर अहकामात नाफिज करने हैं, प्लीज़ वो नाफिज कीजिए। अपनी शख्सियत में इताअत और इखलाक लेकर आइए, अपने किरदार में से गुस्सा और बदगुमानी ख़त्म कीजिए। ये हैं करने के काम हमारे, और ये हमारे इख्तियार में हैं, इन्हीं को रब ने हमारे इख्तियार में किया है। तो रब के हवाले अपने आप को कर दें, अंधेरों में से खैर निकालेगा, बिल्कुल जैसे अल फलक, रब दिल फलक चट्टानों में से चश्मे बहा देता है। हमारी इनफिरादी परेशानियों को भी दूर करने की पावर रखता है। और ये आयत हमें बता रही है कि हम मुसलमानों को भी ये हर तरह की मुश्किल से निकाल सकता है। सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रब्बिल फलक, जो कि आज के दौर के साथ बहुत स्ट्रांगली इंटैक्ट था, इसलिए मुझे लगा कि इट्स अ गुड टाइम टू मेंशन दिस टू यू, टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज इस वक्त कॉन्स्टेंटली ये बातें होती हैं कि प्लीज़ बता दें इमाम महदी कब आएंगे, दज्जाल कब आएगा, और किस किस तरह से जो हैं वो निशानियां सामने आएंगी, इल्यूमिनाटी क्या कर रहा है और उसके पीछे क्या स्कीम्स हैं, कौन से हिडन स्कूल्स हैं। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर लाइफ, दैट्स माई सिंपल एडवाइस। अपने आप को रब के कलाम के साथ जोड़ें और वो करने की कोशिश करें जिसके लिए अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा है और जो मुझे करना है। सूरतुल फलक की ये पहली आयत असल में मुस्तआज़ा बिही है, जिसमें हमने अल्लाह से मदद तलब की है कि अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में ले ले। अब आप देखेंगी कि आयत नंबर एक जहाँ पर मुकम्मल हो रही है, उसके बाद जो आयत ख़त्म होने का सर्कल है उसके ऊपर लाम अलिफ ला लिखा है, और ये लाम अलिफ ला कॉन्स्टेंटली आपको एंड तक नज़र आएगा, आयत नंबर चार के एंड तक। फिर पाँच पर दोबारा से ये साइन बदल जाएगा। सो मतलब क्या है, हर आयत दूसरी आयत से कनेक्टेड है, हर जुमला पहले जुमले से कनेक्टेड है। आउज़ू के साथ हर आयत दो आयत से लेकर पाँचवीं आयत तक कम्प्लीटली कनेक्टेड है, ठीक है। तो पहली आयत है अल मुस्तआज़ा बिही, और दूसरी आयत है अल दूसरी आयत से लेकर आयत नंबर पाँच तक है अल मुस्तआज़ा मिन्हु। अब हम अल्लाह का नाम लेकर सूरतुल फलक की आयत नंबर दो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मिन शर्री मा खलक, यानी बंदे को कैसे दुआ करना सिखाई। अब यहाँ मिन से पहले एक लफ्ज़ महजूफ़ है, छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है। अब आपको महजूफ़ का मतलब भी पता चल गया होगा, क्या मतलब है महजूफ़ है, मतलब यहाँ पर हिडन है। आऊज़ु मिन शर्री मा खलक, क्लासिकल स्कॉलर्स इसको इस तरह समझाते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह में आते हूँ किससे, हर उस शर से जो उसने पैदा किया, जो उसने तख्लीक किया। मिन शर्री मा खलक, अब ये जो मिन शर्री मा खलक है इसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि आयत नंबर दो में अमूमी शर को बयान किया गया है। अमूमी शर क्या होता है, आइन मीम वाव मीम, उमूम कहते हैं कि ये एक जनरल फॉर्म से इसको जो है वो स्पेसिफिक फ्लो की तरफ ले जाया जाएगा। यानी जो आयत नंबर दो है उसमें हमने हर तरह के शर से अल्लाह की हिफाजत तलब की है, और फिर जब आगे आयत नंबर तीन चार और पाँच आएगी उसमें फिर हमें स्पेसिफिक शर बताए जाएंगे जिनसे हमने अल्लाह की हिफाजत तलब करनी है। मिन शर्री मा खलक, हर उस शर से हम आपकी पनाह में आते हैं जो तख्लीक के अंदर मौजूद है। अच्छा, हमने शर का बेसिक मफहूम सूरतुन नास में भी देखा था। शर अरबी ज़ुबान में एक आम टर्म है, आम का मतलब आइन अलिफ मीम, इट्स अ जनरल टर्म फॉर एनी ईवल, आप शर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अरबी ज़ुबान में शर के लिए या बुराई के लिए, यू कैन से अरबी ज़ुबान में बुराई के लिए एक और लफ्ज़ आता है साआ, सीन से, सीन अलिफ हमज़ा, साआ। अरबी ज़ुबान में बुराई के लिए एक और लफ्ज़ आता है जिसको आपने पढ़ा है, कुरान में भी आता है, बीसा, बा हमज़ा सीन, बीसा। जो बीसा है बुराई, ये कौन सी बुराई होती है, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अल्फाज की खूबसूरती अपने कलाम में हमारे लिए वाजे की है। बीसा कहते हैं ऐसी बुराई जो किसी इंडिविजुअल इंसान को बुरी लगती हो, यानी जिस चीज़ को आप अपने लिए बुरा समझते हैं, जो आपको बहुत डिस्कस्टिंग लगता है, कोई चीज़ आपको जो है वो क्रिंच करती है, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती। जैसे कुछ ख्वातीन को कॉकरोच देख कर क्रिंच होता है एकदम से, वो कॉकरोच जो है वो आपको बहुत डिस्कस्टिंग लगता है। तो बीसा ऐसी बुराई के लिए आता है जो किसी के लिए ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली बुराई बन जाए। बीसा शराब आता है कुरान के अंदर, बीसा वो बुराई जो किसी इंसानी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर बुरा हो। बीसा का ऑपोजिट आता है, कुरान में भी आता है, नेअमा, नून आइन मीम, नेअमा। नेअमा क्या कहते हैं? नेअमा ऑपोजिट है बीसा का, और नेअमा होता है कोई चीज़ जो आपको अपने लिए बहुत पसंद है, एक्सट्रीमली पसंद है, आप वाकई बहुत उसको ज़्यादा जो है एडमायर करते हैं, समथिंग एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड, यू आर इम्प्रेस्ड बाय समथिंग, समथिंग दैट यू लाइक एक्चुअली। तो बीसा का ऑपोजिट आता है नेअमा। अच्छा, जो दूसरा मैंने आपको बुराई के लिए लफ्ज़ बताया था अरबी ज़ुबान में जो आता है, वो है साआ, सीन अलिफ हमज़ा, साआ। साआ का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो डिफॉर्म्ड है, डिसफिगर्ड है, साआ उसके लिए आता है, यानी कोई अगली चीज़, कोई बदसूरत चीज़, उसके लिए जो है वो साआ का लफ्ज़ आता है। कुरान में आता है साअत मसीरा, तो साआ अरबी ज़ुबान में आता है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो कि बदसूरत हो, डिफॉर्म्ड हो। तो ये अब लेवल बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू आपका पिछला वाला बीसा, साआ में अब बात वो आ गई कि कोई ऐसी चीज़ जो कि डिफॉर्म्ड है, डिसफिगर्ड है। इसका ऑपोजिट होता है हसना, कुरान में कई जगह पर आया है हा के साथ, हसना, हसना। साआ का ऑपोजिट आता है हसना। अच्छा, अब सूरतुल फलक के अंदर ना हमें मिला है यहाँ पर साआ, ना यहाँ पर आया है बीसा, यहाँ पर क्या आया है? शर। शर का लफ्ज़ जो आता है वो आता है किसी ऐसी चीज़ के लिए, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में डेफिनेशन बताया था, कोई ऐसा स्पार्क जो नुकसान पहुँचाए, यानी शर वो बुराई होगी जो जो भी अडॉप्ट करेगा वो सिर्फ अपना नुकसान करेगा। फाइन, शर वो नुकसान है, शर वो बुराई है जो जिसने अडॉप्ट की हमेशा उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ। आपने उर्दू में लफ्ज़ सुना हुआ है शरीर, शरीर किसको कहते हैं? शरीर कहते हैं एक्चुअली, अगर आप उसको अरबिक कॉनोटेशंस के साथ कनेक्ट करें, बिकॉज अरबिक लैंग्वेज में भी शरीर का लफ्ज़ आता है, उर्दू में वहीं से आया है। शरीर कहते हैं ईजिली इग्नाइटेबल, दिस इज़ द सिंपल वर्डिंग जो मैं आपके सामने शरीर के मफहूम की रख सकती हूँ। आप कहते हैं ना बच्चा बड़ा शरीर है, तो हम उसको ज़रा अलग कॉनोटेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अरबी ज़ुबान में शरीर का लफ्ज़ आता है जो कि ईजिली इग्नाइटेबल है, जिसमें शर का पोटेंशियल मौजूद होता है, बस उसको हवा देने की देर होती है, उसके बाद वो जो है वो बुरी तरह से बर्स्ट हो जाता है। तो शर ऐसी बुराई कि जो अपनाने वाले को नुकसान दे, शर का लफ्ज़ यूनिवर्सल बुराई के लिए इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सल ईवल जिसको आप कहेंगे, जिस जगह, जिस कल्चर, जिस दीन में जो चीज़ भी ईवल होगी अरबी ज़ुबान में उसको शर कहलाए, कहा जाएगा। तो एक ऐसी बुराई जो आपको बर्न कर दे, जो आपको नुकसान पहुंचाए, इसका ऑपोजिट आता है शर का, खैर। हर वो चीज़ जो इंसान अपनाए तो उसका कांस्टेंट फ़ायदा ही फ़ायदा हो, सही। तो ये है शर की डेफिनेशन के साथ आपको बाकी दो अल्फाज का कंपैरिजन। मिन शर्री मा खलका, अल्लाह की हिफाजत में आते हैं उससे, उस तख्लीक में से, उससे जो उसने पैदा किया, शर में से। ये जो मा आया है इस आयत के अंदर, इस मा के लिए कहते हैं जो कुछ भी उसने तख्लीक किया, अल्लाह हम उसके शर से आपकी हिफाजत में आते हैं, यानी हम अलफलक के रब की हिफाजत में आ रहे हैं जिसने हर चीज़ को तख्लीक किया है और उस तख्लीक के अंदर कोई ना कोई इग्नाइटेबल पहलू रखा है। अब सूरतुल फलक की आयत नंबर 2 वो मुकाम है, हमने कहा था ना कि दीन का ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन आपके सामने एक तरह से ईमानियात के हवाले से इन 7 सूरतों में खुलता है। तो अकीदा, ईमानियात और हमारे क्रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी मुकाम पर क्लासिकल स्कॉलर्स एक बहुत बहुत अहम पॉइंट मेंशन करते हैं, और वो अहम पॉइंट ये मेंशन करते हैं कि आयत नंबर 2 सूरतुल फलक, अल्लाह ताला बंदे को दुआ सिखा रहे हैं कि ये जो बंदा है ये अल्लाह की हिफाजत में आए किसी भी मखलूक के शर से। तो स्कॉलर्स मेंशन करते हैं कि यहाँ अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे मिन शर दिल मखलूक, अल्लाह हम आपकी हिफाजत में आते हैं हर मखलूक में जो शर मौजूद है उससे, लेकिन यहाँ ना आया मिन शर्रिल मखलूक, ना यहाँ पर आया मिन शर्री कुल्लिल मखलूक, इन दोनों में से कुछ नहीं आया, बल्कि यहाँ पर मखलूक को इनडायरेक्ट मेंशन किया गया है। जो आप में से ख़वातीन गौर से सुनने की कोशिश कर रही हैं और नोट्स बना रही हैं, दिस इज़ अ वेरी डीप पॉइंट। और याद रखें, फिलॉसफी ऑफ बिलीफ सिस्टम वहीं से निकलता है जहाँ बहुत डीप पॉइंट्स होते हैं। जब भी मक्की सूरतों के अंदर आपको ईमानियात बहुत डीपली रूटेड मिलते हैं, बिकॉज वहाँ बहुत डीप पॉइंट्स हैं, जिसको आप आज की मॉडर्न लैंग्वेज में फिलोसॉफिकल पॉइंट्स कहें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ सकता है। द डीप पॉइंट्स क्या हैं इसके अंदर? हम मुसलमानों का अकीदा जो है वो इस मुकाम पर आकर बड़े वाज़े अंदाज से खुल सकता है। अल्लाह ने यहाँ मखलूक को इनडायरेक्ट मेंशन किया, बिकॉज खालका का तर्जुमा आता है माँ, जो कुछ खालका उसने पैदा किया। तो मखलूक को इनडायरेक्ट मेंशन किया गया है, क्यों? नंबर वन पॉइंट जो अपने जहन में हम में से हर इस दुआ को मांगने वाले को रखना है, आप इस दुआ को जितना डीप बिलीफ फिलोसॉफिकल सिस्टम के साथ और माइंड के साथ मांगेंगी, याद रखिए दुआ में उतना इम्पैक्ट आएगा। मैकेनिकल वे में, रोबोटिक वे में दुआ मांगी जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस होती है, बट जब वो दिल में उतर के मांगी जाती है, समझ कर मांगी जाती है, वो आपकी और मेरी दुआ, हमारा ईमान है, रब के अर्श तक पहुँचती है। तो इसमें डीप पॉइंट क्या है? जब भी अब आप ये सूरत पढ़ें, अल्लाह ने डायरेक्ट मखलूक को मेंशन नहीं किया, इनडायरेक्ट मखलूक को मेंशन किया कि मैं अल्लाह आपकी हिफाजत में आती हूँ, अल्लाह जो रब्बिल फलक है, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा किया। सो नंबर वन पॉइंट इसके अंदर, क्रीड पॉइंट ऑफ व्यू से, अकीदा पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए क्या है? नंबर वन ये कि अल्लाह ने अपने आप को खालका में मेंशन किया है, उसने पैदा किया। अल्लाह तमाम मखलूकात पर फुल कंट्रोल और पावर रखने वाला है। अल्लाह की पावर, इसलिए कि देखें आगे जादू आ रहा है, आगे ईवल आए आ रहा है, आगे हसद आ रहा है, आगे सहर आ रहा है, मैजिक आ रहा है, तो ये इस पॉइंट पर वाजे करना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह हर मखलूक पर कंप्लीट अथॉरिटी रखता है। अल्लाह हर मखलूक को कंप्लीट थामने वाला है और उसका फुल कंट्रोल है। तो जब आप और मैं ये दुआ पढ़ेंगे सूरतुल फलक की, हमें अपने आप को बताना है, ही कैन सेव मी फ्रॉम एवरी हार्म। दैट्स द बिलीफ सिस्टम जो मुझे और आपको मिलता है, दिस इज पॉइंट नंबर वन। इसीलिए डायरेक्ट मखलूक को नहीं बल्कि खालिक के थ्रू मखलूक को मेंशन किया गया है माँ खलका के अंदर। फिर इस माँ खलका के अंदर एक और मफहूम जो स्कॉलर्स बताते हैं कि जब आयत आई मिन शर्री माँ खलक, तो इसके अंदर जो बिलीफ का, ईमानियात का पॉइंट है वो क्या कि असल में अल्लाह ताला ने किसी भी मखलूक को मुकम्मल शर बनाकर पैदा नहीं किया। प्लीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉम अनसीन मखलूकात एंड फ्रॉम द सीन इंसानियत ऑल्सो। अल्लाह ने, द सेकेंड पॉइंट आई एम गिविंग यू, अल्लाह ने किसी मखलूक को कंप्लीट शर की बेसिस पर पैदा नहीं किया, यानी वो सिर्फ शर नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं जो स्कॉलर्स के ये मक्का में नाजिल हुई सूरत लगती है वो इसके इन स्ट्रॉन्ग बिलीव्स की वजह से कहते हैं कि अल्लाह कोई शय ऐसी पैदा नहीं करता, ना अल्लाह ने की है, जो कंप्लीट ईवल हो। इवन, लिसन केयरफुली, इवन इबलीस, इबलीस जैसी शख्सियत को भी आप अगर ये कहें कि अल्लाह ने कोई मखलूक ऐसी पैदा नहीं की जो मुकम्मल ईवल हो, तो ये आपको समझ जाना चाहिए। एंड दिस इज़ आर बिलीफ, दिस इज़ आर इस्लाम, दिस इज़ आर अकीदा। कैसे? इबलीस कौन है? जिन है। जिन कौन होते हैं? अल्लाह की एक मखलूक होते हैं। ये इबलीस अपनी नाफरमानी की वजह से शैतान बना। शैतान बनने से पहले क्या था? आबिद, बहुत इबादत करने वाला। और चाहे इबलीस हो जो शैतान बन गया, या कोई भी जिन हो, अल्लाह ने हर जिन, हर इंसान इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने इन दोनों मखलूकात को मकसद देकर पैदा किया है। अल्लाह ने इन दोनों मखलूकात को अकाउंटेबल बनाया है। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी। अल्लाह ताला ने सूरत अज़्ज़ारियात में कहा है कि मैंने जिनों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो मुकम्मल शर की बेसिस पर ही पैदा की गई हो। ऐसे ही कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे क्या पता अल्लाह ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि मैं नेकियां नहीं कर सकता हूँ, वो सिर्फ गुनाह करता हूँ। नाऊज़ु बिल्ला, ये अल्लाह के ऊपर नाऊज़ु बिल्ला ब्लास्फेमस सेंटेंस है। ये इल्ज़ाम है अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ने किसी मखलूक को कम्प्लीटली शर की बेसिस पर पैदा नहीं किया। हाँ, अल्लाह ने जिनों और इंसानों को इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है। वो चाहें तो अपने अंदर मौजूद शर के पोटेंशियल को एम्पावर करें, या वो चाहें तो अपने तखलीक में, अपनी एग्जिस्टेंस में मौजूद फितरत को फ्लरिश करें। और इंसान जब करप्ट होता है, इंसान जब ईवल बनता है, या कोई भी मखलूक जब ईवल बनती है, जिन्नात जब ईवल बनते हैं, वो अपने आप को खुद इबादत से दूर करके इस स्टेज पर लेकर जाते हैं। कुरान में आता है, ला तुफसिदू फिल अर्दी बाद इस्लाहिहा। इस ज़मीन को करेक्ट करने के बाद इसके अंदर फसाद नहीं करो। अल्लाह ने इंसान भी परफेक्ट बनाए, अल्लाह ने हर मखलूक परफेक्ट बनाई। हाँ, शर का पोटेंशियल सब में है। कैसे पता चल रहा है शर का पोटेंशियल है? ये जो आयत नंबर 2 शुरू हो रही है, हर्फे जर मिन से, मिन शर्री मा खलक। हर चीज जो उसने पैदा की है उसमें जो शर है, वन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द मखलूक। मिन बता रहा है कि कोई भी तखलीक मुकम्मल शर नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा उसका फ्रैक्शन शर की तरफ उसको ले जा सकता है। और हम इंसान अकाउंटेबल हैं कि हम अल्लाह को जवाब देंगे कि हमने किस चीज़ को अपने लिए सेलेक्ट किया। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो कि अकीदे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉलर्स मेंशन करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि अल्लाह ने कोई तखलीक मुकम्मल शर पैदा नहीं की, चाहे वो इबलीस या शयातीन और जिन ही क्यों ना हो। थर्ड पॉइंट जो मिन शर्री मा खलका के अंदर आता है, स्कॉलर्स ने डिड्यूस किया है मिन शर्री मा खलका से, वो कहते हैं कि एक भी मखलूक ऐसी नहीं है जिसमें कोई फ्लॉ ना हो। बिकॉज मिन शर्री मा खलका बता रहा है कि उसने जो कुछ पैदा किया है उसमें एक पॉइंट कोई ना कोई शर का मौजूद है। सिर्फ एक हस्ती परफेक्ट है और वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल, सिर्फ अल्लाह। बाकी तमाम मखलूकात इम्परफेक्ट हैं, उनमें फ्लॉ है, कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ शर है। शर का एलिमेंट मखलूक में हमेशा से है। खालिक मुकम्मल हस्ती है, शर से पाक है। जब भी हम कहते हैं सुबहानअल्लाह, आप तस्बीह करती हैं, सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, किस बात पर तस्बीह करती हैं आप? सुबहान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। किस चीज़ से पाक है? हर तरह की शॉर्ट कमिंग से पाक है, हर तरह के फ्लॉ से पाक है, हर तरह की कमी से, मोहताजी से पाक है। ये है तीसरा कॉन्सेप्ट जो मिन शर्री मा खलका के अंदर आ रहा है कि सिर्फ अल्लाह कामिल हस्ती है, बाकी हर मखलूक के अंदर कोई ना कोई शर का पोटेंशियल मौजूद है। आप सूरज को देख लें, कहने को सूरज बहुत फ़ायदा देता है, मगर क्या इस सूरज के हार्म्स हैं? यकीनन, अगर इसका टेम्परेचर जो इस वक्त सेट किया हुआ है अल्लाह ताला ने, वो थोड़ा सा उससे बढ़ जाए या थोड़ा सा उससे कम हो जाए तो आपका प्लैनेट अर्थ रहने के काबिल नहीं रहेगा। इसी तरह से सेम इज़ द केस विद द नेमा ऑफ पानी, समुंदर। समुंदर इंसान की ज़रूरत है, अगर ज़रा सा सुनामी आ जाए तो ये डिस्ट्रक्शन का बायस बन जाता है। अब ये इसका शर सामने आता है इंसान के। सेम इज़ द केस विद ज़मीन, आसमान, विद ईच मखलूक। कुछ ना कुछ हार्म हर मखलूक में मौजूद है। दिस इज़ द पोटेंशियल थिंग। आपकी कार है, आपके लिए नेमत है, आपके लिए ब्लेसिंग है, यही कार आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो अब इसका शर आपके सामने आ जाएगा। तो इस आयत को इसलिए कहा जाता है कि ये आयत हमें असल में एक उमूमी जो शर हैं, जितने भी मखलूकात में शर हैं, उनसे जो है वो वॉर्न करती है और उनसे हमें जो है वो अलर्ट करके अल्लाह की हिफाजत में आने का कहती है। एक और पॉइंट जो मेरा ख्याल है बेहतर है कि मैं यही मेंशन कर दूं, बिकॉज इसका ताल्लुक इसी से बनता है, तो अच्छा है तीन की जगह चार पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। एक पॉइंट और वो ये है कि स्कॉलर्स कहते हैं ईमानियात का एक और पहलू यहाँ ये आ रहा है कि जो भी मखलूकात का शर है वो उनकी अपनी गलती की वजह से होता है। इसलिए आप देखेंगी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी में दुआ की तो उन्होंने दुआ क्या की थी, मैं जब बीमार होता हूँ तो वो शिफा देता है, फ़ाइदा मरित्तु फ़ाहुवा यशफीनी। ये नहीं कहा कि जब अल्लाह आप मुझे बीमार करते हैं और तब आप मुझे शिफा देते हैं, नहीं 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 नहीं। सो ये अम्बिया की जो दुआएं हैं, अम्बिया के जो किस्से हैं, ये आपको और मुझे खूबसूरती के साथ